चीन मक्खी की तरह होता है, यानी लोगों के ऐप चुनने वाला मक्खियों की तरह होता है जो जख्म पर ही बैठती हैं। और किसी ने कहा ना कि मक्खी की शायद 50 या 100 आंखें है, और क्या फायदा, बैठती फिर भी गंद पे ही है। तो बस आप भी देख लीजिए, अगर आपने बैठकर लोगों के ऐप ही चुनने, बस लोगों को अगर मगर की आदत होती है, यानी इल्लत, इल्लत कहते हैं बीमारी, किसी आदमी का जिक्र कीजिए तो कहेंगे बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन फिर इस लेकिन के बाद इसकी खूब खूब बुराइयां की जाती हैं। आप जरा नोट तो करें अपने इर्द गिर्द, आपको कई किरदार ऐसे मिलेंगे, वो हैं बहुत अच्छी, बस ऐसे ही है, पढ़ाती बहुत अच्छा है, बस लंबा बहुत होता है,
और वो हैं तो बहुत अच्छी, बट लैंग्वेज बड़ी मुश्किल बोलती हैं ये अंदाज। हाँ, कुरान ने क्या कहा, इशारे करने वाला बर्बाद है, वो आंख से इशारे करता और चुगलियां खाता फिरता है, और तुम में से कोई किसी की गीबत ना करे, वही लुल्ली कुल्ली खुमजत इल्लुमजा, और इसी तरह कोई किसी की गीबत ना करे। सूरत हुजरात आयत 12। हमारी खुशी इस बात में है कि हम दूसरों को खुश करें, इन्हें आराम पहुंचाएं और इनकी सलाहियतों, कामों और फजल का एतराफ़ करें। हम एहतराम और एहतमाम पाएंगे जितना इनसे एराज, तजाखुल और बेपरवाही बरतेंगे, उतना ही वो भी हमसे तगाफुल और एराज करेंगे। बराबर सराबर का बदला है, कौन अक्लमंद होगा जो लोगों से तो अपना एहतराम करवाना चाहे लेकिन खुद उनकी इहानत करे। यकीन कीजिए कुछ लोग ऐसे हैं, खुद लोगों की बेइज्जती कर रहे होते हैं, फिर कहते हैं तुम मेरे से प्यार नहीं करते ना, तो मेरी कदर नहीं है ना, ये वो, तो ये भी बड़ी ही नासमझी की बात है। और ये भी याद रखिएगा कि जो दूसरों की इहानत करता है ना, वो ये चाहता है कि उसकी इज्जत की जाए और खुद लोगों को जलील करना चाहता है, ये गलत तकसीम है जिसके बारे में कुरान क्या कहता है, वइलुल मुतफ़िफ़ीन, नाप तोल में कमी करने वालों को बर्बादी हो। ये नाप तोल कौन सा है, इज्जतों का तथफीफ है, लोगों की तारीफ ना करना जबकि वो डिजर्व करें। अगर आपने सूरह मुतफ़िफ़ीन पढ़ी है मेरे साथ, तो आपको सारे लफ्ज़ याद आ जाएंगे तथफीफ के जो अमूमन हम ना समझियों में कर देते हैं, इस सोच के साथ कि छोड़ो अब हम क्यों इनको बड़ा बनाएं, और लेट डाउन करने वाला अंदाज अल्लाह ताला बचा के रखे। तो फिर लिखिए, जैसी करनी वैसी भरनी, जो किसी के लिए घड़ा खोदता है वो खुद उसमें गिर जाता है। और अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, चंद अहादीस देख लीजिए, बुखारी की रिवायत है 6125, आसानी पैदा करो तंगी पैदा ना करो, लोगों को तसल्ली दो और तशफ़ी दो, नफ़रत ना दिलाओ, बशिरु वला तुनफ़िरु। फिर इसी तरह आपने फरमाया कि जो मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान की दुनिया की तकलीफ़ों में से कोई चीज़ दूर करे, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन की तकलीफ़ों में से कोई तकलीफ़ दूर करेगा, और जिस शख्स ने किसी तंग दस्त के लिए आसानी की, अल्लाह ताला इसके लिए दुनिया और आखिरत में आसानी करेगा। तो फिर क्या पता चला कि दूसरों की तंगियाँ दूर कीजिए, क़यामत के दिन आपकी तंगियाँ दूर हो जाएंगी, और जो किसी मुसलमान की पर्दापोशी करेगा तो अल्लाह ताला दुनिया में इसकी पर्दापोशी करेगा, और अल्लाह ताला उस वक्त तक बंदे की मदद में लगा रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है। क्या ये सब सुनकर दिल नहीं चाहता कि फालतू वक्त सारा दूसरों की खिदमत में गुजार दें और उनके काम करने में लग जाएं? यकीन करें बहुत बड़ी नेकी है खल्के खुदा की मदद करना। हम नेकियों के जोम में बैठे रह जाएंगे, इबादतों के खौल में होंगे, किताबों के बोझ में लदे रहेंगे, और कितने ही लोग सिर्फ फराइज अदा करके, हराम से बच के, लोगों की खिदमतें करके, खिला के पिला के बता के हमसे बहुत आगे चले जाएंगे। दुआ कीजिए, अल्लाह मुझे लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बना दे। आपने अबू मूसा अशरी की रिवायत के मुताबिक मास बिन जबल को जब यमन का हुक्मरान यानी हाकिम बनाया, तो फरमाया था कि लोगों के लिए आसानी पैदा करना, इनको दुश्वारियों में ना डालना, लोगों को खुशखबरियां देना, दीन से नफरत ना दिलाना, और तुम दोनों आपस में मुवाफ़क़त रखना। ये सही मुस्लिम की रिवायत है 6853। अब मतलब ये है कि लोगों से कह दो नमाज ना पढ़ो, नहीं, मोमिन को कभी नमाज छोड़कर आसानी नहीं मिलेगी। बाज़ लोग कहते हैं क्यों इतनी पाबंदियां, अब रोजे रखो, अब ज़िलहज के भी रोजे, हाय तकबीरात, नहीं आपको बुरा लग रहा है लेकिन अल्लाह वालों को ये मामला आसान लगता है। और फिर मस्तून दुआ मांग लीजिए, अपने भी लिए, मैं अपने लिए और हम सब एक दूसरे के भी लिए, कि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन मुनकरातिल अखलाकी वला माली वला हवाई। ए अल्लाह, बेशक मैं बुरे अखलाक, बुरे आमाल और बुरी ख्वाहिशात से तेरी पनाह चाहती हूँ। ये तिर्मिज़ी की रिवायत है 3591। और फिर एक और चीज़ देखिए, सूरत मुतफ़फ़ीन में जो कमी बेशी की बात हुई थी, तो हकूक़ के मुतालबे और फ़राइज़ में कोताही बरतना ये भी तथफीफ़ है। यानी लेने पे आए तो बढ़ता हुआ लें, देने पे आए तो घटता हुआ दें, फिर इज्जत चाहना मगर देने में कोताही करना, आखरत की ख्वाहिश रखना और आमाल में कोताही बरतना। और वैलुल्लिल मुतफ़फ़ीन, बड़ी खराबी है कमी करने वाले नाप तोल में। और याद रखिएगा, ये लाइफ टाइम टिप्स हैं, किसी दीन से भी इसका ताल्लुक नहीं। हर मजहब, हर फिरका, हर जमात इस चीज़ की मुकल्लफ है कि वो इन चीज़ों पे अमल करे और अपने आप को दूसरों की नज़रों में पसंदीदा बनाए। और अगला टॉपिक तो और भी खूबसूरत है, और वो क्या है, दूसरों की मेहनतों पर पानी ना फेरें। अल्लाह हमें अंदर से खुरच के इतना खूबसूरत, इतना चमकदार बनाना चाहता है, तभी तो ये इतनी प्यारी बातें सुना रहा है। मैं तो सोचती हूँ कि अगर ये बुक ना पढ़ी होती और अगर इस किताब को ना जाना होता और इसके ऊपर अपने आप को ना लिया होता, तो हमारे अपने अंदर अखलाक की कितनी कमियां बेशियां रह चुकी होती। तो लिहाजा सुन लीजिए कि जैसे हम अपने लिए पसंद नहीं करते कि कोई हमारी मेहनतों पे पानी फेरे, इसी तरह हमें किसी की मेहनतों पे पानी भी नहीं फेरना। जिंदगी का असूल बना लें, मोमिन वो जो दूसरे के लिए वही पसंद करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। और जितना ज्यादा एक इंसान दूसरे का खैरख्वाह होता जाएगा, तो क्या सीखा हमने कि दूसरों की मेहनतों पे पानी नहीं डालना। समाजी ताल्लुकात यानी सोशल रिलेशंस में ये लिखते हैं कि समाजी ताल्लुकात से मैंने ये इस्तेफादा किया कि अपने आप को और अपने दोस्त को खुश रखने का तरीका ये है कि इसकी मुनासिब इज्जत करें, इसे सबसे अच्छे नाम से पुकारें जो इसका उर्फ हो, यानी मारूफ नाम हो, यानी गलत नाम ना दें, या जो कुनियत हो। जो आदमी भाई और दोस्त को ज़मीरे मजहूल से पुकारे, ये ज़मीरे मजहूल क्या होती है पता है? ओए, अबे, ओ बे, इधर आ, ये कहकर पुकारना, इससे ज्यादा बेहेस और बदजोक कौन होगा। सोचिए कि क्या आप भी पसंद करेंगे कि कोई आपका नाम गलत ले अपने ऊपर लीजिए। जवाब आपको साफ मिलेगा, 100% नंबर मिलेंगे, 100% ट्रू आंसर होगा। कोई नहीं पसंद करता, नहीं। किसी से तजाहुल, एराज और नजरअंदाजी का रवैया तबीयत की खसासत, खसासत कहते हैं खसी यानी छोटा, जिसको कम जर्फ कह सकते हैं, एहसास की मुर्दनी यानी मुर्दा दिल या एहसास ही मर गया, और जज्बात की ठंडक की दलील है। क्या औरत बेचारी को अफसोस ना होगा कि वो घर को साफ सुथरा रखे, चीजें करीने से लगाए, घर को खुशबूदार बनाए, फिर शौहर घर आकर इन सब से आंखें मीच ले, ना शुक्रिया अदा करे ना तारीफ का कोई लफ्ज, तो क्या इससे इसकी मेहनत पर पानी नहीं फिर जाएगा? कितनी छोटी बातें कभी मर्द सोचते हैं? सारे दिन के गए, औरत ने सारा दिन घर साफ किया, खाना पकाया, और जरा सी 19 से 20 हुई तो चीखने लग गए, एक तो मुसीबत है इस घर में आकर ये वो। अल्लाह अकबर कबीरा, मत कीजिए ऐसा। जो भी कुछ भी करते हैं ना, आप उसको जरूर एडमायर करें। देखिए, जिंदगी का एक असूल लिखे, हमारे वालिद की बात है, नाम इसलिए लेती हूँ कि माँ बाप होते हुए आप भी अपने बच्चों को अच्छी बातें कहें, ताकि कल जिंदगी के किसी मोड़ में आप कहाँ हो उस वक्त ये तो नहीं पता, लेकिन आपकी बातें बच्चों के लिए मिसले रहा हूं। और वो क्या कहा करते थे, जो जुमला बोलने लगी हूं उसको लिख लीजिए। आप इस बात को अपने दिल से लगा लें कि आप दूसरों की मेहनतों पे पानी ना फेरें, जितना भी कोई करे। यानी उनका जुमला क्या था कि जिस दरख्त के नीचे थोड़ी देर के लिए सस्ताए भी हो जिंदगी में, कभी उस दरख्त को कभी ना काटना। यानी मोहसिनों को भूलने वाले बड़े थर्ड क्लास लोग होते हैं। हमारे मोहसिन, हमारे उस्ताद, हमारे मोहसिन हमारे माँ बाप, और हमारे ससुराल हमारे शौहर, और हमारे बड़े और बहुत सारे लोग मोहसिन हैं। क्या हुआ अगर आज वो आपके साथ काम नहीं कर रहे तो आप उनकी पिछली सारी की कराई पे पानी डाल देंगे। लोग यही करते हैं, बिलीव में यही करते हैं, बल्कि और बुरे बुरे लकब और खताब देते हैं कि चलो जान छुटी, गए तो बच गए हम। नहीं, लोगों को उनकी जगह पे रखिए। झूठी तारीफें तो ना करें, मुबालगा तो ना करें, लेकिन किसी ने अगर कोई नेकी की, कोई खैर की, उसका जिक्र जरूर कीजिए। दुआएं सबको देते हैं तो उनको भी दीजिए, आपका क्या जाएगा? आप क्यों इतने बखील हैं? कोई कमी है दुआओं की और मांग लीजिएगा। तो किसी की मेहनतों पर पानी ना फेरें, और वो कैसा शख्स होगा जो अपनी मेहनत पे खुद पानी फेर दे। और ऐसे चंद लोगों को मैं जानती हूँ किसी तजुर्बे के तहत, कि किया तो बहुत किया, और जब किसी गलत फहमी की वजह से छोड़ा तो सब किया किराया भी मिटा कर चले गए। चलिए अच्छी बात, उन्होंने आपको बुनियाद से शुरू करने का मौका दे दिया, लेकिन अपने घटियापन का सबूत दिया। कोई माली अपने लगाए हुए पौधों को उखाड़ दे तो मान लीजिए कि उसको माली कहना भी इस लफ्ज़ की तौहीन है। तो कभी किसी की मेहनतों पर पानी ना फेरिए, लिहाजा गैर की जानिब भी तवज्जो कीजिए। जिसने जो काम किया है उसका शुक्रिया अदा कीजिए। खूबसूरत मंजर, बेहतरीन खुशबू, अच्छा काम, पाकीज़ा मौसर और दिलकश शेर और मुफीद किताब, इसकी तारीफ कीजिए। यानी जो अच्छी लगे, खुशबू अच्छी, वाह बड़ी प्यारी खुशबू लगाई है आपने, खूबसूरत मंजर, वाह क्या प्यारा मंजर है, क्या अच्छा काम किया। यानी हर वक्त छोटी छोटी जानदार और बेजान चीजों की तारीफ करते रहिए, हत्ता के मच्छर भी आ जाए ना कमरे में तो आप उसको भी प्यार से कहे, चल मेरा छोटा, अल्लाह ने तुझे जिस काम पे लगाया तू कितना अच्छा काम कर रहा है। कहते एक बुढ़िया थी, सबकी तारीफें करती थी, हर एक को कहती फुला है बड़ा अच्छा, है बड़ा अच्छा। तो किसी ने कहा अम्मा आप तो एक दिन शैतान की भी तारीफें शुरू कर देंगी। तो कहने लगी और क्या भाई, जो काम उसके जिम्मे है कितना अच्छा कर रहा है। अल्लाह अकबर। अब जिनको समझ आया वो मुस्कुराएंगे, जिनको समझ नहीं आया वो बड़े भोले हैं। तो जिंदगी में छोटी छोटी तारीफें कीजिए, और अपना नाम अहले मुरव्वत, वफा और अमानत दारों में दर्ज कराएं। यानी लोग आपको बेमुरव्वत ना करें। लोगों को गिला है तो रहने दीजिए, वो अपनी दूर कर सकते हैं। कुछ लोगों को रहेगा गिला, वो कहेंगे आप मेरी कदर नहीं करते, मान लीजिए, कहने दीजिए। आप चेक कर ले कि आप तो नहीं ना कदरे। लोग कहेंगे आप बड़े बेमुरव्वत हैं, कहने दीजिए। आप चेक करें आप बेमुरव्वत तो नहीं है। लोग आपको कहेंगे आप बेवफा हैं, कहने दीजिए। आप चेक कीजिए कि कहीं आप बेवफा तो नहीं है। पर बस अगर अपने ज़मीर की अदालत में मुतमईन है तो खुश हो जाइए। तो क्या सीखा, एक से खूबसूरत मौजू, के वो कहते हैं ना शम्मा भी जब बुझने लगती है ना तो फड़फड़ाती है, शोला तेज होता है। मुझे तो इस टॉपिक को पूरा करने को दिल ही नहीं कर रहा, आपको मेरे बोलने की स्पीड से भी लग रहा होगा कि मेरा कोई इरादा नहीं है इस मौजू को पूरा करने का। आपके इरादों की खातिर पूरा कर रही हूँ, वरना मैं तो कभी भी ना करूँ शायद। मैं तो हर हफ्ते आपको एक एक टिप देती जाऊँ और एक साल तक ये कोर्स चलता रहे कि आपके गम दूर होते रहे। यकीन कीजिए ये वो टिप्स हैं जो हमें कुरान तो देता है पर हम लेते कोई नहीं। हम तस्किए और तरबियत वाली आयतों को तो पीछे गुजारते हैं, ये पीछे बात हो गई थी, गोया कि ये खबर थी जो सुन ली, अब आगे चलो और कुरान पूरा करो। नहीं, किताबें पूरी करने के लिए नहीं होती, इनको अंदर उतारिए, जज्ब कीजिए, दोबारा पढ़ाएं, दोबारा पढ़ें एक से एक। और अब तो ये सीख लिया कि दूसरों की मेहनतों पे पानी नहीं फेरना। मखलूक का शुक्र कैसे होगा, अपने से कम के साथ एहसान का मामला करना, और अपने से बराबर के साथ एहसान का बदला देना है। और अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि जिस शख्स को कोई नेमत दी गई, इसने इसका जिक्र किया तो उसने इस नेमत का शुक्र अदा किया, और अगर इसने इसे छुपाया तो इसने इसकी नाशुक्री की। सिलसिला सहीहा की रिवायत 402 है। अब इस बात को करते हुए जो कि अभी इस वक्त है, तो मैं भी जरा इस पे अमल करना चाहूंगी। ये डोंट बी सैड सीरीज जो चल रही है और अब आखिरी लम्हों पे है, ये किताब एक अरबी की किताब थी और उसका इंग्लिश उर्दू ट्रांसलेशन है, लेकिन माजरत ख्वाहाना अंदाज पे कहूंगी कि उर्दू वाली किताब को पढ़ना भी मुश्किल था, लेकिन मैं इस वक्त इस मुकाम पर उस सारी टीम का जिन्होंने ए टू जी यानी फ्रॉम द स्क्रैच टिल एंड मेरा साथ दिया इसको पढ़ने में, पढ़ाने में, इसके रीडिंग मटेरियल में, इसकी स्लाइड्स में, इसके फ्लो चार्ट्स में, के सीरीज को 4 चांद लग गए, मैं दिल की गहराई से उन सब की शुक्रगुजार हूँ। और आप सबके सामने तहदिल से नेमत के लिए उनका नाम ले रही हूँ कि कहीं कल आप मुझे ही ना कुछ तमगा देते फिरें कि आपने ये पढ़ा दिया। यकीन कीजिए कि ये साथ ना होता, इन कोशिशों को मैं ना पाती, तो ये किताब इतने खूबसूरत तरीके से ना होती। कल भी मैंने उन साथियों में से कुछ के साथ दुआया कलिमात शेयर की और मैंने उनको यही कहा कि आपने तो मेरे लिए सीरीज को पढ़ाना इतना खूबसूरत कर दिया, इतना ब्यूटीफाइंग जर्नी है ये, यकीन कीजिए। और आप सब सुनने वालों को भी कहूंगी, आप तजुर्बा करके देख लीजिएगा कि अगर आप कभी इस बुक को हासिल कर पा लें और अगर PDF ही ले लीजिए, पढ़ना शुरू करें, थोड़ी देर पर थक जाएंगे, बारीक लिखा हुआ है, टेक्स्ट इतना क्लियर नहीं और कुछ भी। तो ये सीरीज अगर वाकई किसी की जिंदगी को तब्दील कर चुकी तो इसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत है, कई घंटे, आप तो वो घंटे गिन लेंगे ना जो इधर पढ़ाए गए हैं, इसके पीछे जो मेहनत है ना अर्करेजी होती है, और ये हर सीरीज के साथ होता है। और अल्लाह ताला का करोड़ शुक्र है कि उसने इतने प्यारे साथी दिए कि वो पिछला पूरा होने से पहले अगला मांगते हैं। और आप ही को तहदीसे नेमत में बताऊं कि जिस टीम ने इस प्रोजेक्ट पे काम किया कल उस ग्रुप का नाम बदल चुका है, एक अगले प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो गया है। अभी पूरी ब्रॉडकास्ट भी नहीं हुई लेकिन उन्होंने अगला प्रोजेक्ट लिया। और एक सिस्टर का प्यारा सा जुमला जो ग्रुप में थी, मुझे तो नहीं पता, कहने लगी मुझे तो इस पूरे में काम ही नहीं दिया इन्होंने, सारी दुआएं तो वो ले गए जिनको इस प्रोजेक्ट में काम मिला। यकीन करें मुझे उन पर बहुत प्यार आया, मुझे पता भी नहीं वो कौन है, ना नाम याद है अभी भी। लेकिन मैंने कहा ये कैसे लोग हैं कि जो सवारियां ना मिलने पर रोते हुए जाते हैं। याद कर लीजिए सूरह तौबा को 10वें पारे के एंड पे, तो ये जज्बे कुरान पढ़ के आते हैं। एक है जिनको कहा जाता है काम करें और वो कहते हैं वक्त ही नहीं, फुर्सत ही नहीं, मसरूफ ही बड़े हैं। और एक लंबी लिस्ट है उन लोगों की जो कहते हैं कुछ तो काम दीजिए ना, कई दिन से मैं अपने काम नहीं दिए। काम करने में हजारों गलतियां करते हैं, फिर भी उनको काम देते हैं, पता है आपको क्यों? कि अगर आज इनकी गलतियां हम बर्दाश्त नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और फिर वालिद की बात याद आ गई, कच्ची फट्टी टूटी रोटी खाते हुए कह रहे हैं कितनी अच्छी रोटी बनाई है। किसी ने कहा आप इस रोटी की तारीफ कर रहे हैं, कहा हाँ, अगर इसकी रोटी मैं नहीं खाऊंगा तो कल कौन खाएगा? ये करना पड़ता है, ये बड़ा बनने के नुस्खे हैं, ये राज है, इस पे गौर कीजिए। और जितना ज्यादा आप इस चीज को समझ गए, आप हर दिल अजीज भी बनेंगे, लोगों की दुआओं का हिस्सा भी बनेंगे, और लोग हकीकत में फिर आपको आने वाली नस्लों तक याद करेंगे, आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। आपका हो सकता है नाम भी लोगों को याद ना रहे लेकिन आपका काम लोगों को याद रहेगा, और आप दुआओं में होंगे और जज्बों में होंगे। खुशकिस्मत वो लोग हैं जो दिलों में रहते हैं और दुआओं में रहते हैं। ऐसा जी के जाइए कि लोग आपके लिए दुआएं करें, आप वम ममायन फो नासुफयम कुछ पे अमल करने वाले बन जाए। आजकल जो साथी सुबह की सीरीज सुन रहे हैं क़यामत का बयान, उसकी हदीस सीरीज कौन अच्छा खैरुन नास मन हम, और उसमें देख लीजिए हर दिन हम यही देख रहे हैं कि अच्छा वो कि जिसको लोगों को नफ़ा देना आ जाए। और जितना ज़्यादा लोगों को नफ़ा देने वाले आप और मैं बन के दुनिया से जाएंगे, कब्र उतनी ठंडी होगी और फराख होगी और रोशन होगी। लिख लीजिए, अल्लाह को अपनी मखलूक से बड़ा प्यार है, अल्लाह को अपने बंदे बड़े अच्छे लगते हैं, आप उनको आसानियाँ दीजिए। आज की हदीस भी यही थी कि अपने घर वालों में अच्छे रहें, कल की हदीस थी लोगों को नफ़ा देने वाले सबसे अच्छे होते हैं। तो अल्लाह ताला हमें लेने वाला नहीं देने वाला बन जाए, जब लें तो पूरा लें, पढ़ते हैं तो बेहतरीन पढ़िए और नहीं पढ़ते तो फिर सुने तो बेहतरीन सुने, और कल सुनाएं तो पूरा सुनाएं, बेहतरीन सुनाएं, हक अदा कीजिए। अगला टॉपिक भी बहुत ही खूबसूरत आ गया कि दूसरों की नकल ना कीजिए। एक शायर है, उसकी किताब जो उसका कसीदा है अनाफी मक्का, शायर का नाम उमर है, یعنی اس کا شعر کچھ ہے، مطلع کہتے شروع میں، کہتے کہ میں مجلس میں تھا اور مجھے ان کی طرز بہت اچھی لگی اور ترنم اچھا لگا، قصیدہ مجھے یاد ہو گیا اور اس کا طرز ادا بھی، ایک قصیدہ میں نے بھی نظم کیا اور انسٹیٹیوٹ کے جلسے میں اسے عمر ابو ریشہ کے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی، ان کی نقل کرنی چاہی لیکن ظاہر ہے میں ابو ریشہ نہ تھا، چنانچہ ان کی نقل بڑی بھونڈی اور شاخ گزری، اس کے بعد میں نے نقالی چھوڑ دی اور اس اپنے طرز پر قصیدہ پیش کیا۔ جی تھوڑے لفظ مشکل تھے، شاید جذب نہ ہوا ہو، کچھ لوگ دوسروں کو کاپی کرتے ہیں بولنے میں، خطبہ پڑھنے میں اور چلنے میں اور لوگوں سے بات کرنے میں، چھوڑ دیجئے، نقالی صرف بندر کو اچھی لگتی ہے۔ آپ کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، آپ کے اپنے اندر ایک خوبصورتی ہے، اور ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ کوا چلا ہنس کی چال وغیرہ وغیرہ، تو اپنی ٹون خود بنائیے، دوسروں کی نقالی چھوڑ دیجئے۔ اسی طرح کا واقعہ جدہ میں گزرا، جہاں ایک مسجد میں عشاء کی نماز پڑھی، امام نے ایک مشہور قاری کی نقل کرنی چاہی لیکن کہاں ممکن تھا، نہ آواز یکساں تھی نہ لہجہ، مشقت سے امام صاحب کا سینہ کانپنے لگا، آواز بھررا گئی، سانس ٹوٹنے لگی، پیچھے ان کی تکلیف و مشقت اور بناوٹ سے میں پریشان ہو رہا تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر الگ فطری استعداد، صلاحیت اور صفات رکھی ہیں جو دوسروں سے بالکل الگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورت مائدہ 48 میں کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے الگ طریقہ اور منہاج بنایا ہے، یعنی اللہ نے ہر ایک کا ایک منہج بنایا ہے۔ لہٰذا آپ کو نئی چیز پیش کرنی ہے تو کیا حرج ہے کہ آپ اپنے طریقے، طبیعت، مزاج اور صلاحیت کے مطابق پیش کریں، کیونکہ سورت بنی اسرائیل 84 میں کیا آتا ہے، کہہ دیجئے کہ ہر آدمی اپنے شاکلہ پہ عمل کرتا ہے، کلو یعمل علی شاکلہ، تو جیسے ہماری شکلیں اپنی ہیں نا، ویسے شاکلہ بھی اپنی ہے۔ دیکھیں ایک کی شکل پہ گلابی رنگ بڑا سجا، آپ نے بھی پہن لیا، اس کو دیکھ کر آپ پہ نہیں سجے، بالکل اسی طرح ایک کے منہ سے وہ جوک اچھا لگتا ہے، ایک کے منہ سے وہ انداز اچھا لگتا ہے، وہ بے ساختگی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے انداز سے اچھا نہ لگے۔ تو یہ کاپی کرنا، اور بعض دفعہ جو کسی نے کیا ہم بھی وہی کریں گے، کاٹیں گے، چھانٹیں گے، پھاڑیں گے، وہ کریں گے، لوگ ڈیزائن نہیں لیتے۔ آپ دیکھیے خواتین کو تو عادت ہے، کپڑوں کے ڈیزائن چوری کرتی ہیں ایک دوسروں کے اور جو کچھ بھی ہے۔ تو اپنا انداز خود پیدا کر، وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا نام خود پیدا کر اگر زندوں میں ہے تو۔ لہٰذا دوسروں کی آواز، گفتگو، بیٹھنے اور چلنے کے طریقوں کو نقل نہ کریں، اپنے آپ کو نقل کی زحمت، مشابہت اور محاکات کی دشواری سے بچائیں۔ آپ کی جذبیت، چاشنی اور مٹھاس اسی میں منحصر ہے کہ آپ نئے پن اور تاثیر میں اپنا طریقہ، ڈھنگ اور پیشکش کا الگ سا انداز اپنائیں۔ تو پھر کیا پتہ چلا کہ لوگوں سے نہ پوچھئے کہ یہ آپ نے کہاں سے لی، کیا لی، کیسے کی، بلکہ نقل نہیں اتارنی، عقل استعمال کرنی ہے۔ اور ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں، نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ تو الٹا ہی پکڑ کے لے جاتے ہیں سیدھی چیز کو، کیونکہ عقل استعمال نہیں ہوئی۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت 84 اور مائدہ 48 جو ہم نے اس سیشن میں پڑھی، جس سے پتہ چلا کہ ہر ایک کا اپنا ایک رنگ ڈھنگ ہے۔ اور سورۃ الاعراف میں اللہ نے کیا کہا کہ نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ہر ایک اپنے اپنے طریقے پہ عمل کر رہا، کریں کیا، اپنی خوبی پہچانیں۔ ابو بکر ابو بکر تھے، عمر عمر تھے، عثمان عثمان تھے، علی حیدر قرار تھے، ہر ایک کی اپنی خوبی، اپنا نام، اپنی ذات، اپنا بڑا۔ تو پھر کیا کیجئے کہ اپنے آپ کو نکھاریے۔ اور آخری ٹاپک آج کی نشست کا، جسے کر نہ سکتے ہوں اسے چھوڑ دے، ان اچیویبل ٹارگیٹس اپنی زندگی کا ہدف نہ بنائیے۔ یہ لکھتے کہ میں شہر ابہا میں جمعے کے خطبے دیا کرتا تھا، اکثر سیرت کے موضوع پر گفتگو ہوتی، لوگ اسے پسند بھی کرتے تھے، لوگوں کو مہروں کی یہ زیادتی کا مسئلہ پیش آتا ہے، اس لیے مجھ سے اس پر بات کرنے کے لیے کہا گیا۔ اس موضوع پر اظہار خیال کے لیے واقعی مثالوں اور عام زندگی کے واقعات کی ضرورت پڑتی ہے، اس طرح کا کام مجھ سے ہوتا نہیں کیونکہ میری دلچسپی اور صلاحیت سے سیرت کو مناسبت ہے۔ اس موضوع پر طبیعت میں روانی آ جاتی تھی، پھر بھی میں نے گزارش منظور کی اور فی البدی مہر کے مسئلے پر خطبہ دیا۔ ایک آیت اور حدیث پڑھی، پھر مثالیں دینی شروع کی، لیکن مناسبت نہ ہونے کے باعث ربط باقی نہ رہا اور آئیں بائیں شائیں کرتا رہ گیا۔ دیکھیے کوئی رائٹر اپنے بارے میں ایسا کہے، یہ بہت کم ہوتا ہے، اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب بندے کو خود پر اعتماد ہوتا ہے۔ تکلف کے باعث پسینہ پسینہ اور زبان پر جمود طاری ہونے لگا، جلدی سے خطبہ ختم کر دینا پڑا۔ خطبہ کیا تھا؟ افق پر ایک شعاع تھی، یعنی سورج کی جگہ بس ایک شعاع دے کے آ گیا۔ موضوع کا حق ادا نہ ہو سکا، اس سے بھی مجھے یقین ہو گیا کہ زیادہ مناسب یہی ہے کہ جس موضوع پر آسانی سے بول سکتا ہوں اسی پر بولوں اور تکلف سے اپنے آپ کو بچا لوں، کیونکہ قرآن پاک میں ہے وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور آپ بھی دیکھیے، جو لوگ درس و تدریس کا کام کرتے ہیں عموماً وہ ایسے ہی کرتے ہیں، کسی کی بات لی، سنا، جا کے لکھی ہوئی بات بول دی، وہاں آڈینس نے کوئی ایسا ایک ہی سوال پوچھ لیا جو اسپیچ میں نہیں ہوا، پھنس گئے۔ یاد رکھیے، دوسروں کی بات بولی ہوئی آپ لفظ بہ لفظ لکھ لیں اول تو ممکن نہیں، لیکن آپ اس کا ایک ایک لفظ لکھ بھی لیں، جا کے ایز اٹ از پڑھ بھی دیں، تو بھی ہر ایک کی تاثیر اپنی، ہر ایک کا انداز اپنا۔ پہلے اس کی بات کو جذب کریں، ہضم کریں۔ چھوٹی سی مثال، اچھی تو نہیں لیکن فائدہ دیتی ہے، جیسے مجھے کسی کے بارے میں بتایا گیا کہ ابھی چند پارے پڑھے تو بڑے جوش میں انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا۔ جو ساتھی تھے انہوں نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ پڑھا رہی؟ انہوں نے کہا جی۔ انہوں نے کہا آپ قرآن پورا کر چکی؟ کہا نہیں، بس دورہ قرآن کیا تھا اور اب چار پارے پڑھ کے تو پڑھانے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو پڑھانا آتا ہے؟ کہنے لگی میں اپنی استاد کا ایک ایک لفظ سنتی ہوں، لکھتی ہوں، جا کے بولتی ہوں۔ انہوں نے خیر دو چار باتیں کی، انہوں نے کہا کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ اپنی استاد سے اچھا پڑھا سکتی ہیں؟ اس پہ وہ خاموش تھی۔ آپ اگر استاد کے بولے ہوئے لفظوں کو ایز اٹ از جو آپ کو اچھے لگے وہ آپ بیان کر دیں، اور پھر جو آپ کے دل میں شوق ہے آپ اس کو اگر ریکیپ اور دہرائی میں اور اس کے ساتھ ڈسکشن میں لے لیں تو کیا آپ کا اجر کم ہوگا؟ لیکن بعض دفعہ ایسا نہیں ہوتا، لوگ سوچتے ہیں میں پڑھاؤں گی تو اچھا ہوگا۔ تو اگر پڑھانا ہے تو اس سے پہلے دو کام ضرور کیجیے گا۔ پہلے اس علم کو خود لیں، پھر جسم پہ، دل پہ، دماغ میں، روح پہ اتاریں۔ اندر چلا گیا جیسے کھانا کھایا، پھر جذب ہوا، ہضم ہوا، جسم کو طاقت ملی، پھر بولیے، 100 دفعہ بولیے، اچھا بولیں گے، اس سے بھی اچھا بولیں گے، کوئی استاد آخری حجت نہیں ہوتا۔ اور استاد کو جتنی خوشی اپنے شاگرد کو پڑھاتے دیکھ کر ہوتی ہے، اب میں اپنے آپ کو اسٹیج پہ دیکھتی ہوں کہ کہیں کوئی انگلش زبان میں، کہیں نوش میں، کوئی اردو میں پڑھاتا ہے تو میرا جتنا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، میں کہتی ہوں واقعی، جیسے باپ کو اپنے بیٹے کو دکان پہ بیٹھا دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، ماں کو بیٹی کو کچن میں کام کرتا دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، اسی طرح استاد کو شاگردوں کو پڑھاتا دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے جذب نہ کیا، نہ آپ کے اندر گیا، نہ آپ کا کال بدلا، نہ معاملے بدلے، نہ عمل ہوا، تو جا کر سنی بات سنانا ایسے جیسے کھانا کھایا اور کہہ کرتی، وومٹ ہو جاتی ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ اور پھر تکلفاً انداز بدلنا یہ بھی درست نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہمیں تکلف سے منع کیا گیا، لہٰذا اگر ہم آرام اور سکون اور بہتر پیشکش چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اسی کو لیں، اسی پر گفتگو کریں جسے بہتر طور پر کر سکتے ہوں، جس کا حق ادا ہو سکے۔ حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ تم میں کوئی بھی جب کوئی عمل کرے تو بہتر طریقے پر انجام دے، کیونکہ اچھے انداز میں کرنے سے دل کو ندامت نہیں ہوتی، ضمیر میں خلش نہیں رہتی، اور امانت کا حق بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رائٹر ہونے کے ساتھ ساتھ اور آئس کرنی بہت بڑے اسپیکر بھی ہیں، ماشاءاللہ۔ آپ ان کے لیکچرز عربی میں سننا چاہیں، آپ ان کا نام ڈالیے یوٹیوب میں، آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ تو کیا پتہ چلا کہ بعض دفعہ انسان کو خود لگتا ہے کہ میں نے حق ادا نہیں کیا، اور کبھی کبھی پڑھا کے اٹھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے صحیح کھانا کھا کے سیر ہو گئے، تو زبان پہ گرے پڑ جاتی ہیں، جب تک اللہ نہ چاہے نہیں کھلتی۔ تو پھر کیا بات سیکھی، جسے کر نہیں سکتے اس کو چھوڑ دیں، بلکہ اس کا دوسرا کوئی راستہ ڈھونڈ لیجئے۔ گاڑی چلائی اور روڈ پہ پہنچ گئے اور آگے گاڑی سنبھالی نا، تو وہی ہوگا جو آج کے لیکچر میں ایک استاد نے اپنے شاگردوں کے ساتھ کیا۔ ہوں تو کیا سیکھا، کام کو اچھے طریقے سے کیجئے، فائدہ کیا ہوگا، دل مطمئن ہوگا، ضمیر ملامت نہیں کرے گا، کام قابل تقلید ہوتا ہے، پھر لوگ آپ کے کام کو بلکہ فالو کریں گے، آپ کا کام اتنا اچھا ہوگا، اور امانت کا حق ادا ہوتا ہے۔ کام برائے کام تو نہیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سے مجھ سے راضی ہو. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.